इसलिए पहले हमारे इनका नाम क्या द्विवेदी जी को विशेष विशेष धन्यवाद है कि हमारी ये भारतीय संस्कृति की कला को जीवित रख रहे हैं। बहुत से कलाकार हैं किंतु ऐसे कलाओं को दिखलाने वाले और इस उम्र में भी परिपक्व उम्र में वे द्विवेदी जी का यह कला वो अत्यंत प्रशंसनीय है। ये भारतीय कलाओं को जगा रहे हैं। जिस प्रकार से हम भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए सारे विश्व में घूम रहे हैं, अमेरिका जैसे देश में भी भारतीय कला का ये हमारी भारतीय एक कला है। कितना सुंदर नृत्य किया बच्ची ने। धन्यवाद। आरंभ करें। सत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेदु तम हृदयं मुनिमा तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणं। मैंने कल आरंभ किया श्रीमद् भागवत। जैसा मैंने पहले कहा था और बार हमने श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किया 1 से 9 अध्याय तक का। हमने संक्षिप्त में ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश महाराज और चरित्रों का हमने यदि भक्ति करना है सीखना है तो प्रहलाद महाराज जी से भक्ति करना सीखो। भजन करने में चित्त स्थिर रहना चाहिए जैसे प्रहलाद महाराज का। हजारों कष्ट आए विपत्तियां आई चुपचाप धैर्यपूर्वक अपने पिताजी से तनिक भी उन्होंने कुछ नहीं कहा किंतु सत्य से डिगे नहीं। चित्त कभी उनका चंचल नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए। ये संसार है इसमें तरह तरह की झंझट आएंगे। कभी लाभ होगा कभी नुकसान होगा। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि वो विधि के हाथ में है। हजार चेष्टा करो होई है सोई जो राम रची राखा वही होगा जो उन्होंने रच करके रखा है। इसलिए चित्त को ठीक रखना चाहिए। दुख और सुख भाई ये जगत में हम आए दुख भी आएगा सुख भी आएगा कभी हानि होगी मरण होगा कुछ लेकर के मैं आए कुछ लेकर के जाना नहीं है तो चिंता बेकार का बखेड़ा किस लिए। इसलिए पहले गीता के उपदेशों को धारण करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज जी का वैसे ही और सुन करके 9 स्कंद तक भागवत को सुन करके प्रहलाद महाराज जी बड़े प्रसन्न परीक्षित जी बड़े प्रसन्न और वो हाथ जोड़ करके उनसे करें वो कथा को थोड़ा सा विश्राम देना चाहते थे। यदि पानी पीना है तो पी ले कुछ खाना है तो खा ले। नहीं नहीं प्रभु आप जो अमृत की वर्षा कर रहे हैं उसी से हमें रात्रि हो गया। पहले मैं भूख और प्यास से तड़फड़ाता था अब इस समय नहीं। आप अपनी हरि कथा रखिए जारी रखिए और वो तब फिर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं।
निवृत्त तर्षे उपगीयमाना भौ सदात स्रोत मनोभिरामात कह उत्तम श्लोक नाम बात विरचे बिना पशु। वो पशु के समान है, पशुओं की हत्या करने वाला है, वो आत्महत्या अपनी आत्महत्या करने वाला है। जो सुखदेव गोस्वामी वो परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं, आप जैसे निवृत्त तरह से ही संसार से निवृत्त हो गए हैं, एक कपड़े की भी जरूरत नहीं है, इस कपड़े की भी जरूरत नहीं है, खाने पीने की कोई भी उनको कुछ भी नहीं है, न सोते हैं न कुछ न कोई चीज की जरूरत है। ऐसे जो महामुक्त पुरुष हैं, भगवत तत्व के ज्ञानी और रसिक, क्योंकि राधा कृष्ण की ऐसी लीलाओं में डूबे हुए हैं जिनका चित्त, जैसे ये बच्ची ने अभिव्यक्त किया ना, जिसके नित्य कला में देखने से ही कितना सुंदर भाव, और हमारे द्विवेदी जी का देखा ना, चाहे राम को हो या श्याम, ऐसा सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। उसमें राधा जी का कैसी महिमा, रुक्मिणी के साथ में, सत्यभामा के साथ में शादी हुई और उनका नाम कोई नहीं करता है, रुक्मिणी कृष्ण, सत्यभामा कृष्ण, सब लोग कहते हैं राधे श्याम, राधा कृष्ण, क्यों? ये प्रभु के प्रेम के आगे झुक जाते हैं। तो आपने अब तक की कथा सुनाई, अब तो हमको अलबेली राधा श्याम की कुछ कथा सुनाइए, मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। कोई सुंदर चीज हो तो उसे तृप्ति नहीं होती, आज मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे सुखदेव गोस्वामी जी, ये आप जैसे निवृत्त व्यक्तियों के मुख से जो परम मनोहर लीलाएं हैं कृष्ण की, वो कैसी है? बड़ी मनोहर है, सुनने में भी अत्यंत मधुर है, कानों के लिए रसायन है, भौरों की एकमात्र अचूक राम बाण औषधि है। मेरी हिंदी समझ में आती है सबको या किसी को नहीं भी आती है? आती है सबको, तुम्हारी बेटी को आती है? कहाँ है? हाँ, सुनना, अच्छी तरह से सुनना तुम भी, नहीं आए तो बतला देना, हम थोड़ा सा अंग्रेजी में भी बोल दें, थोड़ा सा। सो कृष्ण दिस स्वीट पास्ट टाइम्स और ओनली द मेडिसिन ऑफ दिस रोटेशन ऑफ एंडलेस रोटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, वेरी डेंजरस, वेरी सफरिंग। Now we are young, so we are not understanding all these things. But when you will be old and older and without a stick you cannot walk, then you will realize how dangerous this world is. Especially at the time of death, when Jamdut will come, have you chanted name? Oh, I never. Then come with me and he take the soul from this body. Very dangerous, very suffering. You may at that time make a stool, urine. They were very dangerous. So, if you want to be careful from that, तो क्या करो? भगवान की कथाएं जो हैं उसके लिए भौर औषधि, कैसी औषधि? राम बाण, जैसे राम का बाण अचूक होता था, ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसे ये औषधि भाव अपने आप तुमको पता नहीं लगेगा कि कैसे ये कब हमारा ये संसार खत्म हो गया और कृष्ण के नित्य लीला गोलोक धाम में पहुंच करके हम उनके परमानंदमय हैं, ये समझ में नहीं आएगा उस समय कब हो गया। जैसे गाय का एक खूह का में पानी रखा गया, गाय चलती है ना, जब गाय वॉकिंग करती है तो उसके पैर के खूह जहाँ नरम मिट्टी होती है वो हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है,
तो आदमी उसको जब जाता है तो उसको देखता नहीं है, वो पार ऐसे ही हो जाता।
ऐसे ये संसार एंडलेस है। इन भगवान की कथाओं से तुम चाहो और न चाहो अपने आप हो जाएगा। यदि तुम अपने हाथों को आग में दो, जलाएगी का नहीं? तुम अज्ञान से, तो बच्चा छोटा सा बच्चा हाथ दिया, जलाएगा कि नहीं? चाहे जान करके बुझ करके को या मत करो, उसमें इतनी शक्ति है। ऐसे भगवान की कथाओं में जरूर कार्य करेगी अवश्य। यदि किसी प्रकार से इसके चरणों में अपराध मत करो, वैष्णवों के चरणों में अपराध मत करो, भगवान के चरण जरूर विलंब इसी में कुछ हो जाता है, मालूम नहीं होता है। इसलिए कहते हैं निवर्तता उपगीयमानात बहुसधात मनोभिरामात। ऐसी जो भौरों की अचोक औषधि है, और आप जैसे संसार से निवृत्त रसिक तत्व ज्ञानी परम मुक्त, जब ये भगवान की लीला कथाएं सुना रहे हैं, ऐसा कौन दुर्भागा होगा जो भगवान की ऐसी रसमयी लीला कथाओं से अलग रहेगा, नहीं सुनेगा? बोले बड़े परम दुर्भागा है। देखो हमारे पिताजी थे, पितामह अर्जुन उनके पितामह हैं, फादर ऑफ फादर, अभिमन्यु वाज फादर ऑफ परीक्षित एंड अर्जुन वाज हिज ग्रैंड फादर। वो समरे अमरंजय देवताओं के लिए भी जो जीत नहीं सकता था कोई, ऐसे ऐसे जो वेल मछली शार्प मछली उसको भी निगल जाती है, ऐसी एक तिमिंगल मछली होती है, ऐसे मछलियों को भी निगलने वाले महाराज ये भीष्म पितामह इत्यादि बड़े बड़े वीर थे जो कौरवों का पक्ष लेकर के लड़ रहे थे। और हमारे पितामह अर्जुन ने कृष्ण के बल से उनको परास्त कर दिया। ऐसे महाभारत समर को इन्होंने जीत लिया। कैसे जीत लिया? जैसे कि वो पानी गुआ के खूर में होता है, ऐसे अन्यासी उसको जीत लिया। भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु थी, उनको कोई मार नहीं सकता था, कर्ण ऐसे ही था, द्रोणाचार्य को भी कोई नहीं मार सकता था, वरना बड़ा भारी कठिन था। किंतु कृष्ण के थोड़े से इशारे से उन्होंने किया कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, उन्होंने हमारे रथ को कृष्ण जी ले चलिए बीच में, जरा देखो तो हमसे कौन लड़ने के लिए आया। और उस समय में कृष्ण बीच में रथ ले गए, देखो कहते हैं कि अब मैं नहीं लड़ूंगा, अरे ये तो हमारे गुरु जी हैं द्रोणाचार्य, ये तो भीष्म पितामह हमारे पास दादा हैं जिन्होंने हमको पालन पोषण किया, एक साथ में हम ये दुर्योधन इत्यादि के साथ में खेले, हम इन लोगों से कैसे, ऐसा संभव बन नहीं है, मैं नहीं। कृष्ण ने उनको समझाया, और समझाने के बाद में जब अर्जुन की बुद्धि ठीक हो गई, अब जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा, तो फिर उन्होंने बांट लिया अर्जुन ने पहला, और लेकर के अनुसंधान करके और भीष्म पितामह के चरणों में, हाँ इधर सुनिए, भीष्म पितामह के चरणों में उस बाण को ऐसे मारा जैसे फूल उनके चरणों में गिरा हो, कोई चोट नहीं लगी। ओ भीष्म पितामह जी कहते तो मेरी इसी युद्ध में विजय हो जाए, तुम्हारी विजय हो, आशीर्वाद, और यदि हमको प्रणाम नहीं करता तो तुम जरूर हारता। और वैसे ही द्रोणाचार्य को एक बाण लिया और उनको भी ऐसे ही फूल के समान उनके चरणों में गिरा दिया, और ये तुम्हारी विजय हो, जरूर विजय होगी, आशीर्वाद दिया, और विजय उनकी हुई। महाभारत बड़ा भारी, कैसे कैसे वीर, कैसे कैसे, एक वीर ऐसा आया उसमें क्या क्या उधर में सब लोगों का चित्त जा रहा है, इसलिए क्या जा रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, आता चित्त मत इधर करो, हो ना हो आप लोग सुनिए।
तुम इधर आओ,
यू शुड कम।
जाओ तो बोलो। तो एक बर्बरी नाम का एक बालक आया और कृष्ण से कहा, आप आदेश दिए, जरूरत क्या है, मैं अकेले ही सबको वीरों को मैं मार सकता हूं। मार सकता है, इतना तो वीर है। अच्छा तो तुम हमको दिखलाओ तो ये कैसे मारेगा। तो उसने बांध लिया और उसको अनुसंधान किया, धनुष पर मंत्र बोला और जब धनुष से जब बाण जब चला, जितने वीर थे सब लोगों को फूल के समान सबके हृदय में ये बाण लगे, किंतु कोई आघात किसी को नहीं। देखिए ये मैंने कहा निशाना बना करके, एक सेकंड के अंदर में सारे वीरों को मैं ध्वंस कर दूंगा। आप हमसे कहिए इनको लड़ने की कोई जरूरत अकेले अजय निशाना बना, आप कहिए अब इनको मारू, एक सेकंड में सब वीरों को मारू और पांडव किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा। कृष्ण ने साथ ही साथ में चक्र लिया और चक्र से छोड़ा और उसका गला उतर गया। आज तुमको लड़ने की अब जरूरत नहीं, तुम्हारी जीवन रहेगी और उसके सिर को एक पहाड़ के ऊपर में ऊंची जगह पर उसको रखवा दिया। तुम देखो जो युद्ध में कौन सबसे वीर है, जब हमारा युद्ध सही हो जाएगा तुम बतलाना जो कौन वीर है सबसे महाभारत को कौन। तो देखता रहा, जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया तो उस समय में अर्जुन और भीम में कुछ लड़ाई होने लगी। मैंने युद्ध करके मैंने सबको मारा है, भीम कहते कि मैं नहीं रहता तो ये युद्ध नहीं होता और तुम भी मारे जाते। और दोनों में जब बात युद्ध होने जब गर्मा गर्मी अधिक हुई तो कृष्ण कहा जय ठहरो, वो बर्बरी को हमने रखा है ये निर्णय करेगा जो किसने युद्ध किया। तो उस समय बर्बरी को बुलाया गया, उसके सिर को ले आया कृष्ण और बोले अजय भाई ये बतलाओ, जैसे ये भीम ने युद्ध करके हराया ना अर्जुन ने कराया, या किसकी करामात है। अजय इनकी तनिक भी कोई शक्ति ही नहीं है, जो कुछ किया आपने किया ये तो निमित्त मात्र है। तो ये कहते हैं उस समय में मैं महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, मैं माता के गर्भ में था, मैं करीब करीब 8-9 महीने का हो गया था, अब थोड़ा ही जन्म होने में देरी थी और वो बाण ब्रह्मास्त्र आया और उसके माता के गर्भ में चला गया। उसको मैं ही माता कौरव और पांडवों दोनों वंशों का एकमात्र जीवन था और सब मारे गए थे, बस वही एक मैं था। उसी समय में कृष्ण जो उत्तरा उसकी मैया चिल्ला उठी, हे कृष्ण रक्षा करो। उस समय कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के उसके भीतर में घुस गए और अपने अस्त्रों से गदा से और चक्र से उसका विनाश किया ब्रह्मास्त्र का और उसकी रक्षा की। उसमें उन्होंने दर्शन किया। अब जब उनकी रक्षा हो गई तो चारों तरफ में खोजती, वो व्यक्ति कहाँ है जो शंख चक्र लेकर के हमारी रक्षा की, परीक्षा करता था इसलिए उसका नाम हुआ परीक्षित। उसी ध्यान में जो देखा अंदर में उसी को चारों तरफ में खोलता था। कृष्ण ने उसको अपनी गोदी में भी खिलाया था, अर्जुन की गोदी में खेले थे ये परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी से कम नहीं है, सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की गोदी में नहीं खेले और वो उनकी गोदी में खेले थे। कितना सौभाग्यवान है जो कृष्ण की गोदी में खेले, कितना लाठ जा करके मुख चुंबन किया होगा, इसलिए कितना सौभाग्य है। इसलिए वो कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी और ये सुन रहे मत समझेंगे कि ये श्रोता उनसे कम है, उनसे अधिक सौभाग्यवान है। सुखदेव गोस्वामी की वो गति हुई कि नहीं मैं नहीं जानता, किंतु ये कृष्ण की गोपी बन करके गए गोलो, अपनी मैया को भी उसी तरह से उपदेश दिया, ये तुम यद्यपि उनकी क्या लगती है बधों के नीचे एकदम, और तुम उनको ऐसा मत समझना, उनको अपना प्रियतम जैसे गोपियां समझती हैं प्रियतम, उनको कृष्ण को अपना प्रियतम समझ करके भजन करो। और उनको भी यही गति,
इसलिए कह रहे हैं ओ हमको बचाया, आज उनका स्मरण मुझे हो रहा है। आप उन्हीं कृष्ण की, मैं तो पीछे मेरा जन्म हुआ, ब्रज की लीलाओं को नहीं जानती हूँ, नहीं जानता ये किस प्रकार से ब्रजवासियों के साथ में कृष्ण बच्चे बन करके रहते और मैया ने उनको ओकल से बांध दिया, ऊ कर करके रोने लग गए और गोपियों के चरणों में गिर पड़ते थे, गोपियां उनको लड्डू दे करके और लड्डू ले लो जरा नाचो तो ठीक करके नाच रहे हैं कृष्ण, और गोपियों ने कहा ऐसे नहीं राधा जी के चरणों में गिरो, ये राज रानी है, तुम ब्रज का मालिक नहीं है, ब्रजेश्वरी ये कौन है, ये राजा जी के चरणों में गिरो। ये सब लीलाएं जो है जो भी ब्रह्मा शंकर के लिए भी अलग है, इन लीलाओं को आप हमें सुनाइए। एक बात हम आपने बतलाया पहले, ये बलदेव जी रोहिणी नंदन कहलाते हैं, रोहिणी के पुत्र, वसुदेव जी की दो पत्नी, अनेक पत्नी थी जिसमें की प्रधान देवकी और रोहिणी थी, आपने बतलाया रोहिणी की पुत्र थे और एक आपने बतलाया ये देवकी के पुत्र थे, तो एक ही शरीर से दोनों के कैसे पुत्र हो गए, ये बड़े आश्चर्य की बात है कैसे हो गए। और एक नंदनंदन है और दूसरे हैं वसुदेव नंदन, देवकी नंदन या यशोदा नंदन, ये भी कैसे हुआ मेरी समझ में नहीं आता है। ये दोनों को लोग कहते हैं, ये कहते हैं ये वसुदेव जी के पुत्र हैं देवकी के, और कुछ लोग कहते हैं देव नंद बाबा के और यशोदा के, और वो यहाँ पर जन्म होता है माता पिता होती है उसको लोग छोड़ते नहीं है, तो अपने प्यारे माता पिता को और देश को छोड़ करके वो गोकुल में क्यों गए, यदि उनका जन्म हुआ वहां क्यों हुआ, वहां पर उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं, और फिर वहां से फिर मथुरा में कैसे आए और अपने मामा को मारा, ये तो बड़ी भारी गड़बड़ी है। मामा किसको कहते हैं, अपनी माँ के भैया, तो ये देवकी का चचेरा भाई लगता था कंस, इसलिए कंस कृष्ण का मामा लगता था, तो उसको क्यों मारा उन्होंने, क्या गलती की उसने जो मारा। और फिर यहां पर द्वारका में आकर के बहुत सी स्त्रियों के साथ उन्होंने 16108 महिषियों के साथ वो उन्होंने विवाह किया, महाभारत का युद्ध लड़ा अंत में, और अंत में अपनी लीला का को समाप्त कर दिया, परस्पर लड़ा करके सभी लोग लड़ गए, भिड़ गए अपने में और सबका विनाश ऐसे दिख रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आता, ये उनके नित्य परिकर हैं वो लड़ करके मरेंगे, ये तो मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए इन सब लीला कथाओं को मेरी सुनने की इच्छा हो रही है, आप मुझे सुनाइए। तब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं एवं निशम भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यक्ष कृष्णाचरितम कलिका कलमस्मग्नम व्याहर्तम आरभत भगवत प्रभा। सुखदेव गोस्वामी बड़े रोमांचित और पुलकित हो गए, तुमको विशेष विशेष धन्यवाद है, तुमने हमारे हमको हमारे अंदर में कृष्ण की सारी लीला कथाओं का स्मरण करा दिया एकदम प्रारंभ से, मैं उतावला हो गया हूं इस समय अपने मुख से अपने आप हरिकथा करते, ऐसा ही होना चाहिए, संत लोग कैसे होते हैं अपने आप उनके मुखों से जो हरि कथा निकलती है, तस्मिन महन मुखरितो मधुवेश मधुभित मधुसूदन जो कृष्ण उनकी मधु भरी हुई मधुर जो लीलाएं हैं जो संतों के मुख से अनर्गल मानस सरोवर से जैसे हजारों नदियां निकलती हैं गंगा इत्यादि, कभी उसमें पानी की कमी नहीं होती, उसी प्रकार से उनके मुख से अपने आप हरि कथा जो निकलती उसमें एक बिंदु को भी जिसने पान कर दिया उसका जीवन सार्थक हो जाता है, उसका भय शोक मोह संसार का सब दूर हो जाता है और आनंद में वो मग्न हो जाता है, ऐसी भगवान की कथा है।
इसलिए तुमको विशेष धन्यवाद है। इतने श्रोता लोग आए हैं, सब श्रोताओं को नमस्कार है। आयोजकों को जो आयोजन कर रहे हैं उनको भी नमस्कार है, सब लोगों को। उस कथा ये अब ये जो स्थान है ये बैकुंठ हो गया, सदा के लिए ही बैकुंठ हो गया। इसे सबको नमस्कार करके जो प्रेम भरी भगवान की कथा को सुनता है उनको पहले श्रद्धा, इसके बाद में साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति और अंत में भगवान की प्राप्ति होगी। अब उन्होंने आरंभ किया है, जो बड़ा भयंकर था, भयंकर अंग्रेजी वेरी डेंजर। उस समय रावण और राम के युद्ध में जितने लोग मारे गए थे, बड़े बड़े राक्षस, मेघनाद, कुंभकर्ण और ये सब राजा के रूप में अब आए हैं उस समय में, और पृथ्वी के भार बने हुए हैं। इस समय तो कुछ कम है, उस समय में बहुत अधिक हो गया था। घर में लड़की बैठी है उसको उठा ले जाएंगे, ये जयद्रथ इत्यादि के लिए देखा गया, और भी ऐसे ही हजारों, कंट्रोल नहीं था। लोग परस्पर लड़ते फिरते थे, मारते थे, किसी को अपहरण कर लिया। अभी आज भी अपहरण हो रहा है सब, किंतु उसमें जैसा भयंकर हो रहा था वैसा नहीं, जो बड़ा अंधकार में था। कंस अपने पिता को कैद कर लिया, हथकड़ी और बेड़ी लगा करके रख दिया। वहां के जितने मथुरा वासी लोग अपने आत्मे से सबको जेल में भर दिया, नहीं तो मारपीट करके भगा दिया। इतना अत्याचार सब हो रहा था, स्त्रियों का सम्मान नहीं था, सत्पुरुषों का आदर नहीं था। ऐसे समय में पृथ्वी जी अपने जम से भार नहीं सहा जाता, और अपने क्रिएटर जो ब्रह्मा है उनके पास में पहुंचे, गाय का रूप धारण, और बोली अब मेरी क्षमता से बाहर हो रहा है, अब मैं रसातल को जाऊं। हिमाचल, हिमालय, आल्प्स और इन सब का, मेरू का भार मैं सह सकती हूँ, कोटि कोटि हिमालय का, किंतु अन्याय अधर्म का भार अब मुझे नहीं सह, भार किसी का होता है। धर्म के विपरीत सभी लोग जब चलने लगते हैं तब पृथ्वी व्याकुल हो जाती है। ब्रह्मा के पास गई, उन्होंने शंकर को और सब देवताओं को लेकर के समुद्र के किनारे गए, क्षीर समुद्र, और वहां पर ध्यान लगाया। ध्यान लगाते ही उन्होंने सुना, अरे मुझे पहले से ही पता है हमारे प्रभु कृष्ण अवतार लेंगे जदकुल में, और उस समय तुम देवता, जितने देवता लोग हो वो देव वहां पर ग्वाल बालों के रूप में या जादों के रूप में जन्म ग्रहण करो, और तुम्हारी जो सुंदरी सुंदरी स्त्रियां हैं वो राधा जी की सेवा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए वो वहीं पर गोपियों के रूप में या जादों पत्नियों के रूप में अवतरित हो जाओ। समय आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है जब प्रभु इस जगत में आए। गीता में भी ऐसा बतला है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्म तदात्मान। जब जब धर्म की हानि होती है तब तो साधारण रूप में होती है, तो अपने भक्तों को भेज देते हैं, और जब विशेष होता है तो वही राम के रूप में, निशिंग के रूप में, कल्कि के रूप में, वामन के रूप में, ऐसे ऐसे रूपों को धारण करते हैं, और सबसे गंभीर जब मामला होता है तो कृष्ण के रूप में आते हैं। अधर्म की हानि देकर, धर्म के जो करने वाले हैं उनका सर्वनाश करके और धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं। तब धर्म दो प्रकार का है, एक बाहरी धर्म है, एक आंतरिक धर्म है। अभी ये मेरी स्त्री है, मैं इसका पति हूं, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरा देश है, यह मेरा धर्म है, मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, क्रिश्चियन हूं, ये सब बाहरी धर्म है। आज यहाँ से हम यदि ईरान में जन्म ले लेंगे तो मुसलमान धर्म हमारा हो जाएगा, यदि चीन में जाएंगे तो बौद्ध धर्म हो जाएंगे। ये सब बदलता रहता है शरीर के अनुसार, कर्म के अनुसार, किंतु जो बदलता नहीं है धर्म, वो है आत्मा का, चाहे जिस रूप में पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य सबका एकमात्र धर्म है क्या, हम उनके अंश हैं इसलिए उनकी सेवा करना। ये सबसे बड़ा है। इसकी रक्षा करने के लिए कृष्ण आते हैं, ऐसी मनमोहन लीलाएं करते हैं, अबोध बच्चे जैसे हो करके, और अपने मुक्त महापुरुष जो हैं या महिलाएं हैं मैया यशोदा इत्यादि, उनको भी ऐसा योग माया के द्वारा मोहित कर देते हैं कि वो नहीं समझ पाते हैं कि ये सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम लॉर्ड है, ये भी उनको योग माया से भुला देती है, और कृष्ण को भुला देती है कि मैं परब्रह्म हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, हमारे एक एक इशारे से कोटि कोटि ब्रह्मा और शंकर जी पैदा हो जाए। ये सब कुछ भूल करके छोटे से बच्चे होकर के घरों में मक्खन चुराते हैं, लाल लड़ाते हैं, इस तरह से करते हैं, वो भी प्रेम की भूखे हैं, हमारी प्रेम की भूख है। हम लोगों को उनके लिए उतनी कोई गरज नहीं है, वी हैव नथिंग टू डू विथ हिम, बट ही इज लाइक ए फादर, ही ऑलवेज रिमेंबर्स अस, ओ दे आर गिविंग अप माय सर्विसेज, प्लेइंग विथ मी, नाउ दे आर इन दिस वर्ल्ड एंड इन सफरिंग, सो आई मस्ट गो एंड सेव देम। हम लोगों को उतनी चिंता नहीं है, किंतु कृष्ण को ये चिंता है, इसलिए कृष्ण स्वयं अपने परिकरों को लेकर के इस जगत में आते हैं। दिखलाए ना, जैसे राष्ट्र जब आरंभ हुआ तो गोपियों को किसने बुलाया है? ना गोपियों ने कृष्ण को बुलाया, अपने बंसी से सब गोपियों को बुलाया, इसलिए वो कृष्ण हमको बुलाते हैं, हमारे लिए गोलोक छोड़ करके इधर में आते हैं, और तभी उनकी बात नहीं, कितनी अमृतमय उपदेश बतलाते हैं। देखो अपने को भूलो मत, प्रारंभ जीवन के प्रारंभ से ही हमको स्मरण करो, हमारे शरणागत हो, किंतु हम नहीं सुनते हैं, तो इसलिए वो खुद ही आकर के और सब ऐसी मनोहर बाल्य लीलाएं करते हैं, उनको सुनने से भी कृष्ण में प्रेम आ जाए। इसलिए थोड़े दिन के बाद में कंस का अत्याचार बढ़ा, अपने पिताजी को कैद कर लिया उग्रसेन को, और जिसमें उनकी शादी हो रही थी सूरसेन की, वसुदेव जी की देवकी के साथ में उसका चचेरा भाई था, उस समय आकाशवाणी हुई रथ पर तुमको जिसको ले जा रहा है, अरे यही तो तुम्हारा तुमको मारेगा, आठवां गर्भ से उसको जो पुत्र होगा वही तुमको मारेगा। सुनते ही रथ से कूद गया, जो रथ को हांक रहा था अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए, और वही उठ करके कूद पड़ा और एक हाथ से तलवार खींच लिया और दूसरे हाथ से अपनी बहन का ये जूड़ा पकड़ लिया, केस पकड़ लिया, और मारने के लिए ऐसे तलवार एकदम उठाया ही था कि वसुदेव जी ने रोक दिया। वसुदेव जी ने विचार किया, ये महाराक्षस है, मार तो सकता नहीं किसी हालत में, क्योंकि आकाशवाणी भगवान की आकाशवाणी है, इसलिए जब कहा है आठवां गर्भ जरूर होगा ही और मारेगा ही, किंतु ये दुष्ट सोच रहा है, उस पर विश्वास किया आठवां गर्भ से जरूर पुत्र होगा और इसको मारेगा, किंतु उसको झूठा कर देना चाहता है, ये असुरों का स्वभाव, क्या झूठा करना है, अभी मार देंगे तो बच्चा कहां से होगा, न रहेगा बांस न बनेगी बांसुरी, अरे बांस रहेगा तभी तो उसे बसुरी बनती है, बंसी, तो यदि देवकी को ही खत्म कर दूं तो बेटा कहां से होगा, उसको विश्वास नहीं हुआ जैसे तैसे होगा ही, वसुदेव जी को विश्वास हो गया ये मार नहीं सकता, अब तो हमको निमित्त होना है, इसलिए कहा जी इसको क्यों मार रहे,
हमारी बहन है ना, अपनी बहन को मारना चाहिए? कापुरुष, ऐसा कोई संसार में है जो मरा नहीं हो? जिसका जन्म होता है जरूर मरण होगा। जरूर जिसका जन्म हुआ वो मरेगा, और जो मर गया है वो क्या करेगा? जन्म लेगा, ये तो नीति है। तो बच रहेगा, ब्रह्मा तक चले जाते हैं, सब लोग चले गए और तुम बचा रहेगा, इसलिए तुम इसको क्यों छेड़ रहे हो? कहा पुरुष डरते हो, और जानते हो जैसे बहन कैसी तुम्हारी, उसको मारने से तुमको पाप होगा, पाप का कलंक लगेगा, सब लोग कहेंगे ये अपने बहन को भी मार डाला। अच्छा देखो, तुम इस पर भी नहीं मानते हो, माना नहीं, तब कहा जी अच्छा एक बात करो, जानते हो जो मैं सत्यवादी हूं, जो कहता हूँ वो पूरा करता? हाँ जानता। इसके गर्भ से जितने भी लड़के होंगे या लड़की होगी मैं तुमको दे दूंगा, तुम्हारी जैसा इच्छा तुम मारना है। इसको क्यों मार रहा? बस उसकी बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित हो गई और उसके समझ में कुछ आया, सोचा जी ठीक ही करे। अच्छा पहले बेटे को तो देख ही लूं, ये पहला देता है कि नहीं, और इसके बाद नहीं हुआ तो इसको कत्ल कर देंगे, फिर बेटा नहीं। देख तो दोनों को छोड़ दिया। अच्छा तो आप लोग जाओ, और बहन से कहा जी बहन हमको क्षमा करना। तो उन्होंने कहा मन ही मन में सोचा, खने रुष्टा खने तुष्टा, रुष्टा तुष्टा खने खने, अव्यवस्थित चित्ता नाम, जो क्षण में खुश हो जाता है और क्षण में फिर रुष्ट हो जाता है, रुष्ट और क्षण में तुष्ट ऐसा ही होता रहता है। उसकी कृपा भी बड़ी भयंकर होती है, उसे बच करके रहो, उसे दूर रहो। अभी तो ये छोड़ रहा है और फिर दूसरे क्षण हमको फिर लाएगा जेल में, इसलिए वो तो महात्मा आदमी है, जैसा है वो हमको कर लेना चाहिए, ऐसा सोच करके और चुप हो गए, घर को लौट गए। कुछ दिनों के बाद भी एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होते ही निर्मोही जैसे होकर के वसुदेव जी, देवकी से वो पुत्र ले लिया, उसका मुख चंबन किया, रोने लगी, फिर भी ले आए और कंस के हाथ में हाजिर कर, ये हमारा पहला पुत्र आपको अर्पण कर रहा हूं, ये हुआ है। अच्छा तो ये तो मेरा मारने वाला है नहीं, इसको हम मार करके क्या करें? मैं बहुत खुश हुआ, आप लोग आराम से घर में रहो, दूसरा पुत्र होगा तो फिर हमको ऐसे ही दिख रहा है, और हमको आठवां पुत्र जरूर देना होगा। मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं ना, जो होगा मैं तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। बहुत खुश हो। दूसरे दिन महाराज नारद जी वहां पर पहुंचे। नारद जी को जानती है ना क्या करते हैं? यदि कोई दोनों आदमी ठीक से हैं, पति पत्नी भाई बंधु, तो आकर के कुछ न कुछ झगड़ा लगा देंगे। नहीं, ऐसी जो बात है ये बात नहीं, संसार में सबका कल्याण करने वाले, सबका आदमी समझते नहीं, महापुरुष लोग उनके चरित्र को समझ सकते हैं। यदि कोई संसार में आसक्त हो रहा है तो क्या करेंगे? उसको आसक्ति को हटा करके किसी पर लड़ाई झगड़ा करा करके और भगवान में चित्त मोड़ देंगे, छल बल कल किसी प्रकार से भी चित्त को भगवान में लगा देना ही उनका कार्य है। बोले अरे बेटे तू हमारा शिष्य होकर के इतना मूर्ख कैसे हो गया? तो कहते गुरु जी मैंने क्या मूर्खता? अरे बेटे उसका आठवां जो पुत्र होगा तब तक ये सातों बड़े हो जाएंगे ना, और जिस समय वो जब पैदा होगा तो ये सातों मजबूत होकर के उसके तरफ से लड़ेंगे और तुमको मारने में सहायता देंगे। ये तुम्हारी सहज बुद्धि नहीं आ रही, इनको छोड़ रहा है। अच्छा दूसरी बात, वो कौन से ऐसे एक नंबर गिनेगा जो कौन सा आठवां गर्भ है? यदि दूसरे से न तीसरे से न चौथे से न आठवें से, तो कौन जो पुत्र आठवां है? ये देवता लोग बड़े भयंकर है, चालाक है, साइक्लिक ऑर्डर से उसका एक एक जो साइकिल का वो जो होता है वो पहला नंबर है, तो ये कौन सा पहला नंबर है तुम कैसे समझेगा? उस समय वो गिनती करेंगे, जैसे पहला तो दे दिया था इसलिए उसको छोड़ दो, अब तीसरे से कौन सा हो जाएगा, कोई ठीक नहीं। बस उनके चरणों में गिरा, आपके जैसा हमारा और कोई गुरु नहीं है, आपको बहुत प्रणाम है। और वो बिना बजाते हुए पहुंच गए देवकी और वसुदेव जी के पास में। खबरदार, ठीक रहना सावधानी से, वो हो सकता है फिर तुमको जेल दे दे और फिर तुमको ये जातना दे, किंतु ठीक रहना, प्रभु जी आने वाली आए, अब जल्दी से तुम घबराना मत। इधर से भी बोल करके गए और उनको भी आगा, चोर को कहा जे चोरी करो और घर के स्वामी को कहा सावधान रहना, आज हो सकता है तुम्हारे घर में चोरी। तो इस तरह से भगवान के भक्त लोग भी बड़े रसिक और चतुर होते हैं, कैसे जीवों का कल्याण होगा वो जानते हैं, प्रभु से सिफारिश करते हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पाप बढ़ाए, प्रभु को आने में विलंब हो रहा है। यदि देवकी और वसुदेव हैं, ये महाभक्त लोग हैं और इन पर कर्ण के अत्याचार करने से प्रभु का माथा टनक जाएगा और वो जल्दी से आ जाएंगे, इसलिए देरी की जरूरत नहीं, इसलिए कहते हैं पाप बढ़े पहले, इसलिए ये ऐसा करके चले गए। और उसी समय उन दोनों को पकड़ लिया और बुला करके जेल में ठूस दिया, और पहले बच्चे को उसने और राक्षसों को आदेश दिया कि देखो जहां कहीं भी हरा पेड़ हो फल वाला काटो, कोई भी हरा पेड़ फल वाला ना रहे, और जितनी भी गायें उनको काटो, जो दूध न आए और दूध नारायण से मक्खन न निकले उसमें से घी, घी से ही तो हवन होता है और हवन भगवान को विष्णु को मिलता है, देवता लोग जीवित रहते हैं विष्णु को देते हैं, इसलिए यज्ञपति कृष्ण को ही कहा जाता है, तो वो भगवान ऐसा ही मर जाएगा बिना खाए पिए, इसलिए ये सब बंद करो। लकड़ी होती है जंगल से फल आता है उससे, और अंत में यज्ञ में हवन होता है, इसलिए इन चीजों को ही खत्म कर दो सदा के लिए, जो यज्ञ ही न हो और कुछ भी न हो, देवता भी भूखे मरे और विष्णु भी भूखे मरे। इस तरह से आदेश दिया, अब सब लोग अपने अपने कामों में लग गया असुर और पाप को बढ़ने लग गया, और प्रभु आने की यह सूचना हो रही। एक कीर्तन थोड़ा सा, एक कीर्तन जय जय राधा रमण। सातों पुत्रों को, छह पुत्रों को मारा, सातवें में भगवान बलदेव जी, जिनको सहस्त्र सहस्त्र शिष्य हैं, अपने एक श्वास पर सारे विश्व ब्रह्मांड को स्थिर रखा है, वो बलदेव प्रभु जी उनके गर्भ में पधारे। उस समय भगवान की इच्छा से योग माया उस गर्भ को खींच कर गोकुल में रोहिणी रह रही थी उसके गर्भ में दिया। उसके गर्भ में पहले से एक बच्चा था, वो कौन? पूर्ण बलदेव। और देवकी के गर्भ में था आंशिक, उस गर्भ को खींच करके उस गर्भ में पहुंचा। ये गर्भ के सप्तम महीने में की बात है, रोहिणी के सप्तम महीने में। इधर में सातवें में ही लोगों ने सोचा जी वो गर्भ कहाँ जाने कहाँ चला गया, ये खत्म हो गया। कंस को पता लगा जी वो गर्भ तो गिर गया, कोई बात नहीं थी, किंतु वो पहुंच गया वहां, वो मिल करके रोहिणी के गर्भ में अंश मिल करके पूर्ण में और दोनों पूर्ण। अब कुछ दिनों के बाद में फिर देवकी को गर्भ रहा और उस आठवें गर्भ में स्वयं रजनंदन श्याम सुंदर कृष्ण आए। उस समय देवकी का चेहरा एकदम खिल गया, कम सोचता था कि 10 महीने के बाद में ये पुत्र होगा, उसको पता है क्या जी भगवान की इच्छा कैसी है, वो नहीं समझ सका। आठवें महीने में ही कृष्ण अष्टमी के दिन अंधकारी रात
वर्षा रिमझिम से अब भयंकर होने लग गई।
क्यों? किसी को आवाज न निकले मिले,
सब लोग अपने घर में बंद रहे हैं। पीले जोग माया ने वर्षा कर रही खूब जोर से और बिजली कड़कने ने किसकी हिम्मत नहीं जो बाहर में निकले। और उसी समय उनकी हथकड़ी बेड़ी खुल गई और उनके गर्भ से शंख चक्र गदा पद में लिए हुए 16 वर्ष के पुत्र जैसे कृष्ण उसमें पहुंचे। नारायण के स्वरूप कृष्ण है, वो बंसीधारी सब समय रहेंगे, सिर पर मोर मुकुट रहेगा, बंसी रहेगी। और यहाँ क्या होता है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सोने के आभूषण, यहाँ पर कौस्तुभ मणि इत्यादि है, पैरों में सोने के सब जैसे होते हैं अलंकार हैं सब। बच्चा किसी को ऐसा पैदा नहीं होता, इसलिए इनका जन्म नहीं हो करके इनको मानेंगे आविर्भूत हुए, प्रकट हुए, प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। रामचंद्र जी भी ऐसे ही शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आविर्भूत हुए और कौशल्या में यह हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही भगवान के रूप में, ऐसे ही देवकी उनको और वसुदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे। सारा संसार सो रहा है, कंस भी सो रहा है और किसी की हिम्मत नहीं जाए क्योंकि खूब जो घना घाव वर्षा और ये बिजली कड़क रही है। और पहरेदार जहां के थे हाथ में बल्लम इत्यादि लिए, द्वारपाल लोग सब सो गए। उस समय में कृष्ण ने कहा कि हमारी स्तुति की जरूरत नहीं है, एक बात करो हमको गोकुल में पहुंचाओ, मैं भी बच्चा हो जाता हूं, नहीं तो आपको कष्ट देगा कल। मैं भगवान हूं, तुम्हारी पूर्व तपस्या से मैं प्रसन्न होकर के तुम्हारे पुत्र के रूप में आया हूं, इसलिए कुछ लीलाएं करना चाहता हूं। और इसके बाद में उनको कहा कि मैं बच्चा हो जाता हूं, गोकुल में दे आइए। उन्होंने कहा कि चारों तरफ में पहरे लगे हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, बस हथकड़ी बड़ी तो पहले से खुली और लोहे के फाटक जो थे वो सब खुल गए और सब प्रहरी लोग सो गए। और निकले तो देखा जैसे उत्तर और वर्षा रिमझिम हो रही है, पहले जैसे जोर से नहीं। उसको लेकर के चले जमुना के किनारे आए, देखा जब पानी लबालब भरा है, बड़ा जोर से धारा चल रही है, करंट चल रही है, उसमें पार होना बड़ा भारी कठिन है और पानी एकदम भरा पड़ा है, कहां से कैसे मैं जाऊं। इतने में देखा एक सियाल श्रृगाल पानी को तैर रहा, पार कर रहा है और हमारे तरफ में देखा है, ओ ये हमको बुलाया है, जब यही पार कर रहा है तो हम भी इसके पीछे पीछे पार हो जाएंगे, यहाँ पर पानी नहीं कम है, वहां चलने लगे। सचमुच में पानी वहां पर कैसे कम है और चलने लगे। जब बीच में पहुंचे तो जमुना जी को लोभ हुआ, जैसे इनके चरणों को हमारे एकदम पास में है, जरा स्पर्श तो कर लूं, इसलिए वो बढ़ने लगी और वो पुत्र को सूप जानते हैं फटकने का, उसमें रख करके ले जा रहे थे, उसको ऊपर उठाते उठाते यहाँ तक आए तो पानी भी यहाँ तक आ गया। देखा जैसे अब तो पिताजी डूबेंगे, इसलिए पीछे से उन्होंने सिर पर ऐसे कर करके पैर को पीछे कर लिया और सिर को आगे, तो उन्होंने पैर को लटका दिया नीचे, बस जमुना जी स्पर्श की और फिर। और यहाँ पर एक बड़ी विचित्र लीला हुई जो साधारण आदमी नहीं जानते, कथाकार लोग भी नहीं जानते, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी गोस्वामी इत्यादि सनातन गोस्वामी के टीकाओं में दिया गया। ब्रज के जो कृष्ण हैं, ब्रज के जो बलदेव भैया हैं, ये ब्रज को छोड़कर के एक सेकंड के लिए भी कहीं नहीं जाते। वृंदावनम प्रत्यज्य पाद एकम न गच्छति, ये कृष्ण जो हैं बंसीधारी मुकुट धारण करने वाले, ये कहीं नहीं जाते वृंदावन को छोड़ करके। इसलिए ऐसा हुआ कि इनके घर में जो भगवान के रूप में नारायण के रूप में जो अवतरण हुए, उसी बहाने से वो मथुरा में लौट गए अलक्षित,
और वहीं पर कृष्णचंद्र जी उपस्थित हो गए, वही गोकुल में गए, देखी वाले नहीं गए, वो वहीं रह गए अलक्षित रूप में, क्योंकि लिखा है जत्र सन्निहितो हरि, यहां पर की हरि जो ये कृष्ण है वसुदेव नंदन, ये मथुरा छोड़कर के कहीं नहीं जाते, इसलिए यदि जाएंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए मथुरा छोड़कर के भी नहीं जाएंगे। इसको समझने की चेष्टा, जो वसुदेव और देवकी के पुत्र थे चतुर्भुज, वो ब्रज में नहीं जा सकते, वहां पर उनकी दूसरी लीला है तो एक ही तत्व। अंत में देखो जब आते हैं अक्रूर, जब लाते हैं ब्रज से मथुरा में, तो उसमें भी ऐसा है जमुना जी का हृदय में अक्रूर जी भगवान का स्नान करके ध्यान करते हैं, तो वो कृष्ण बलदेव आते हैं, कौन देवकी और वसुदेव वाले, और वहीं प्रकट होकर उनके साथ में वही लौट जाते हैं, और वो जो नंद नंदन थे राधा कांत थे, वो वहीं से उसी भाग से लौट गए, वो ब्रज को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर लोगों के अलक्षित रूप में अब गोकुल में जाना है ना, जमुना नदी के उस पार में ही गोकुल है, वृंदावन है, इसलिए मथुरा वाले वहां नहीं जाएंगे, इसलिए कृष्ण वहीं पर आए अलक्षित रूप में लौट करके गए। वहां पर दो बच्चे हैं, कौन, एक लड़का एक लड़की, यशोदा मैया को मीठी नींद आ गई है, ने? कुछ बेहोश ही है, मूर्छा में है, किंतु समझ रहे हैं कि हमको बच्चा हुआ है। दो बच्चे हैं ये नहीं समझ सकी, लड़का और वो भी लड़की है ये भी नहीं समझी, और वसुदेव जी उसी स्थिति में आए, देखा एक बच्चा है और बस लड़की को देखा नहीं, लड़की को देखा, बच्चे को नहीं देखा, क्योंकि वो तो वहीं पर चले गए थे ना, जाकर के उसमें मिल करके एक हो गए, इसलिए दोनों को एक में मिल गए थे, समझा। जहां पर जमुना नदी में, जमुना नदी के पास ही में, जबकि कृष्ण अपने पैर को लटकाया, उसी समय तो कृष्ण गोकुल वाले जाकर के आ गए, इसलिए वो कृष्ण तो वहां पर आकर के उनकी सूप में बैठ गए, और उसी सूप वाले कृष्ण को वहां रख करके और उसकी बच्ची को, वो कृष्ण की सहोदरा है, उसी का नाम है जोगमाया, इसलिए कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके कभी नहीं जाते, वृंदावनम प्रत्यय। बलदेव जी उनके संग में है, वो भी कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए मथुरा के कृष्ण और बलदेव जी मथुरा में रहते हैं, जब वहां गोकुल में लीला होती है तो यहाँ पर अप्रकट रूप में रहते हैं, और जब मथुरा की लीला होती है तो वहां पर अप्रकट लीला हो जाती है, उसको आदमी नहीं देख पाता, ये जोग माया का कार्य है। आज इतना ही तक रहे, 7 बज रहा है ना, जल्दी से खत्म हो गए। नहीं तो अधिक बोलना नहीं चाहिए, कल से हम यदि आप लोग कहेंगे तो कथा पढ़ा देंगे, पुंडरीक को और माधव महाराज जी को कहेंगे, थोड़ा सा वो एक एक लीला कहेंगे, हम एक कहेंगे बस, तो थोड़ा सा पढ़ जाएगा और बढ़ा देंगे, आज तो इतना ही रखिए, और कल से बड़ी लुभावनी बड़ी सुंदर रूप में आप लोगों को बतलाएंगे, सब तत्व खोल करके एक एक जैसे बतलाएंगे, जो और कथावाचक लोग वो नहीं सुना सकते, क्योंकि उनकी गुरुमुखी विद्या नहीं, हम लोगों की गुरुमुखी विद्या है, परंपरा से कृष्ण से ही चलती आ रही है, इसलिए हम लोग व्यास जी के और सुखदेव गोस्वामी के वंशधर हैं, इसलिए गुरु जी ने हमको ये सब चीजें ये सब बतलाई, दूसरी जगह प्राप्त हुई, आज यही तक समाप्त करते हैं। गौ प्रेमानंदे जय जय श्री
Thus ends the class on the 19th of May 2002 in the evening in Houston. Hare Krishna.